نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير Don't be sad لا تحزن غم نہ کرو Day 11 ہے آج کے پارے کے ساتھ چلیں اگر ہم تو ہمارے پاس جو آیت ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر نوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں 33 سورۃ الانعام قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون يقولون فانهم لا يكذبونك لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن لوگ تمہیں نہیں چھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں آپ کے میرے لیے اس آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ لوگوں کی باتوں کا رنج کرنا چھوڑ دیجئے ہماری بہت ساری پریشانیاں ہمارے دکھ اور ہمارے پریشان رہنے کی وجہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور خاص طور پہ اللہ کے نبی تو اتنے بڑے کام کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا اس سے بڑا کوئی کام نہیں کیونکہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل اچھے کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور خود کو مسلمان کہے تو اللہ کی کلام میں سورۃ حامیم سجدہ کی آیت کے مطابق اس سے اچھا کسی کا مقام نہیں ہے تو جب دین حق کے رستے میں لوگوں کی باتیں سننی پڑیں اور اسی طرح سے لوگ جو ان کے دل میں آئے وہ کہیں تو آپ نے سنت سمجھتے ہوئے غم نہیں کرنا ایک ہوتا ہے غصہ کرنا اور ایک ہوتا ہے غم کرنا یاد رکھیے کہ غصہ تو کبھی بھی نہیں کرنا لیکن غم اندر جو دل میں آتا ہے اس کا اظہار کس طرح کیجئے اور زیادہ اس کام کو کر کے اس غم کو فیول بنائیے اپنے اندر اتاریے پھر آپ کے اندر اور نیکیاں کرنے کا شوق آئے گا اور بھی لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے کیونکہ ابھی تک بھی لوگوں میں اس چیز کی قدر نہیں اور لوگ ابھی تک سمجھے نہیں تو انشاءاللہ یہ پھر انرجی بنتی ہے تو کام اور ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں گھر بیٹھ جائیں میں نہیں کرتی آج کے بعد یہ نہیں کروں گی اور خاص طور پہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں اور لوگ ذرا سی ہم پہ تنقید کریں تو ہم بہت سیلف ڈیفینسو موڈ میں آ کر کہتے ہیں اب میں کچھ نہیں کروں گی میں آج کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گی اللہ کے نبیوں نے اگر یہ کیا ہوتا تو پھر اتنے آرام سے یہ دین نہ پھیل جاتا اور آج اتنے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچا ہوتا پچھلے سبق میں جو ٹاپکس کیے تھے جس کو آپ پچھلے دن کی آڈیو یا ویڈیو میں سے سن سکتے ہیں صرف میں ذکر کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم ایک صرف دو گھنٹے کے اراؤنڈ یعنی کچھ منٹ کم ہی ہوتے ہیں دو گھنٹے سے اس میں اتنی چیزیں سیکھ لیتے ہیں اگر آپ پورے دن کو اس طرح سے مینیج کریں کہ اس وقت آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھے ہوں غم چھوڑ دیجئے پکانے کا پک جائے گا غم چھوڑ دیجئے صفائی کا ہو جائے گی اور اسی طرح ٹی بی ٹی سی ٹی جو ہمارے غم ہیں ان سب کو پیچھے کریے کوئی غم کوئی ہم ایسا نہ ہو کہ جو آپ کو یہ سننے سے محروم کر دے ہم کہتے ہم چلتے پھرتے سن لیں گے نہیں سنا جاتا کوئی ایک بات جس سے آپ کے کان کھڑے ہو جائیں آپ اس پہ اپنے آپ کو لاتے ہیں باقی میں تو خام خواہ ہی ذہن میں سوچیں آتی رہتی ہیں الا یہ کہ آپ پھر اس کے لیے بہت سی محنت کریں تو کل کے ٹاپک کیا تھے گزشتہ دن آج اور کل کے بارے میں اپنے آپ سے پوچھئے اور فکر مند نہ رہیے اسی طرح رنج قوت کو پاش پاش اور جسم کو توڑ دیتا ہے رنج و غم اور حسد کے اثرات اور اپنے معاملات کو سکون سے حل کیجئے رب تعالیٰ سے خوش گمان رہیں جب خیالات ستائیں تو پریشان ہونا چھوڑ دیں مثبت اور تعمیری تنقید سے مت گھبرائیں انجام آپ کے ہاتھ میں ہے آغاز کر کے دیکھیے یعنی بہت زیادہ سوچنے کی بجائے کام شروع کر دیجئے اکثر افواہیں درست نہیں ہوتی نرمی آپ کو بہت سی مشکلات سے بچاتی ہے جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آئے گا اور زندگی رنج کے لائق نہیں یعنی اتنی قیمتی زندگی اتنی سستی نہ بیچیے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ حزن جمع نہیں ہو سکتا آج جس ٹپ سے ہم بات شروع کریں گے وہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ کریں आप देख रहे हैं कि हम इन्हीं जुमलों को सुनते सुनते काफ़ी ज़्यादा समझ चुके हैं कि हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर ही गम करते हैं। क्यों ना करें, सवाल है, क्योंकि दुनिया तो बेहद छोटी और हकीर है। सालेहीन में से एक बुज़ुर्ग को शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बचा लिया। लोगों ने पूछा, इस वक्त आप क्या सोच रहे थे? कहने लगे, मैं शेर के लुआब के बारे में सोच रहा था कि क्या वो पाक है या ना पाक। उलमा ने इस सिलसिले में कहा क्या है, यानी उनका गुमान था कि अगर शेर ने मुझे टच किया या मुझे खाना चाहा तो पता नहीं वो नापाक है कि पाक है, और फिर मैं नमाज़ पढ़ सकूंगा कि नहीं, सो ऑन। तो कहाँ गम रह गया। बकौल शायर, जिस वक्त बहादुरों को ख़ारिशगाह तीरों का खौफ है, मैं अल्लाह को याद करता हूँ और जंग के दिन तमाम तर लज़ाइश यानी लज्जतों को भूल जाता हूँ। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के दरमियान भी मकसद के एतबार से दर्जा बंदी की है और कहा है, तुम में बास लोग दुनिया चाहते हैं, बाज़ आखरत। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान की कीमत इसकी हिम्मत और इरादे से मुतय्यन होती है। लिख लें ये जुमला, आपकी कितनी कीमत है? जितनी हिम्मत और जितने बड़े बड़े इरादे करते हैं जी। यानी बेहिम्मत इंसान बिल्कुल सस्ता इंसान है। एक हकीम कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि आदमी की दिलचस्पी क्या है, मैं ये बताऊंगा कि वो किस किस्म का आदमी है। और बकौले शायर, जो चरागाह पहुंचना चाहता था, अल्लाह ने उसे वहां पहुंचा दिया। और जो इतराफ़ यानी सराउंडिंग्स, इतराफ़ चरागाह पहुंचना चाहता था, इसे वहां पहुंचा दिया। यानी कि आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना किधर है। एक और शायर कहता है कि वो लोग लिबास और सवारियां लेकर आए और हम बादशाहों को पाबे जोलान लेकर आए। यानी लोग तो अपने साथ लिबास और सवारियां, मुराद ये कि लोगों की नज़र दुनिया की चीज़ों पे है, और हम इल्म वाले वो लोग हैं कि जिनके पास बादशाह भी आते हैं। समंदर में कश्ती उलट गई, एक आबिदो जाहिद पानी में गिर पड़ा, तो अपने अज़ा को वुजू की माने धोने लगा। नाक में पानी डाला कुल्ली की, समंदर ने इसे निकाल फेंका, वो बच गया। इस बारे में इससे पूछा गया तो कहा, सुन लीजिए, मौत से पहले मैं तहारत के लिए वुजू करना चाहता था। देखिए, ये बातें कहने को बड़ी छोटी हैं, लेकिन बंदे की असल खुलती है इनसे। जो अंदर होता है ना, तकलीफ़ और गम की सूरत में बाहर आ जाता है। तभी तो इमाम इब्ने क़य्यिम ही का कौल है ना कि कलमा ईमान वाले के दिल में होता है, बस मौत के वक्त फरिश्ते को देखकर खौफ की वजह से ज़ुबान पे आ जाता है। जैसे कभी घर में चोर आ जाए, अल्लाह ना करे, तो चोर को देखकर खामखई बताने लगते हैं लोग, चाबी इधर, सोना इधर, बस हमारी जान छोड़ दो। तो दिल में ईमान होगा ना, तो इंशाल्लाह मौत के वक्त कलमा ज़ुबान पे आएगा। शायर कहता है, हाथों में हथकड़ी थी फिर भी तुम अल्लाह को नहीं भूले, मौत तुम्हारे पास खड़ी थी फिर भी तुम्हारी आंखें कनखियों से नहीं देख रही थी। यानी जिसकी ये कैफियत होगी, उसको तो मौत के वक्त भी यही फिक्र होगी कि मैं अल्लाह ताला को याद कर लूँ। सकराते मौत में भी इमाम अहमद अपनी दाढ़ी को पानी से खिलाल करने का इशारा कर रहे थे और इसे वुज़ू कराने के लिए कह रहे थे। तो बात यह है कि दुनिया की चाहत वालों को हम कुछ दुनिया दे ही देते हैं, और आखरत का सवाब चाहने वालों को हम वो भी देंगे। सूरह आल इमरान की 145 आयत है। तो क्या सीखा हमने इस टॉपिक से कि छोटी छोटी बातों पर रंज ना कीजिए। बहुत बड़ी चीज़ें अभी उनको देखेंगे, अभी छोटी छोटी चीज़ों पे क्यों दुखी होने लगी। तो ताज्जुब है उस शख्स पर जिस पर गम की आजमाइश आ पड़ी, मगर वो इजाले गम की सकसीर आयत से गाफिल है। कौन सी? ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन, सूरह अल अंबिया 87, जिसको आप और मैं आयत करीमे के नाम से जानते हैं। पाक परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हाँ बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। यानी मैं तो जालिम होकर बैठ गया हूँ। और इस आयत को पढ़ने वाले को क्या मिलता है? ये आयत 88 में है सूरह अंबिया में, फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, चुनाचे हमने इसकी पुकार सुन ली और इसे गम से निजात अता फरमा दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गमों से बचा लिया करते हैं। गमों का पहाड़ भी हो ना, तो ये दुआ मांगने से अल्लाह गम को दूर करता है। कसरत से पढ़िए, किसी और को ना कहिए, खुद खुद पढ़िए, अपने ऊपर लेकर पढ़िए। ये जो हम दोस्तों को बुलाकर एक ख़ास प्रोटोकॉल से पढ़ते हैं, उस पर तो वो शिद्दत ही ख़त्म हो जाती है। तो क्या सीखा कि गम भी इंसान के लिए रहमत बन जाते हैं अगर ये इसको अल्लाह के करीब कर दें। इंसान की असलियत गम और गुस्से के वक्त इसके रद्द अमल से पता चलती है, और इंसान की कीमत इंतहाई नाजुक वक्त में इसकी हिम्मत और इरादे से पता चलती है। और अल्लाह ताला का ये फरमान कि वमा कान अली नफ्स अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबं मुअज्जला, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वमई युरिद सवाब दुनिया नूतिही मिनहा, सूरह आल इमरान 145 है, कि कोई जीरो अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है, जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा इसको हम दुनिया में से ही देंगे, और जो सवाब आखरत के इरादे से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम इनकी जजा ज़रूर अता करेंगे। तो क्या पता चला कि घड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो जब मौत का वक्त भी मुकर्रर है, जगह भी मुकर्रर है, किस तरीके से मौत आनी है, तो फिर इतनी हड़बूंग किस बात की। आज भी लॉकडाउन में है, हिफाजत कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से सिक्योर रखिए, लेकिन ये कभी ना सोचें कि आप कोरोना से मरेंगे। किसी को नहीं पता कौन किससे मरेगा, कब कहाँ मरेगा। कई साल के बिस्तरों पे एड़ियाँ रगड़ते हुए लोग बच जाते हैं, और 20-40 20-30 साल का जवान शख्स दुनिया से चला जाता है। तो मौत को किसी बीमारी का नतीजा नहीं समझना चाहिए, यही हमारा अकीदा है। तो क्या सीखा कि छोटी छोटी बातों पे रंज नहीं करना। अगली टिप लीजिए, तुम्हारे ऊपर ज्यादती हो तब भी रंजीदा ना हो। और मेरा ख्याल ये वो चीज़ है जिस पे हम सबसे ज़्यादा रंजीदा होते हैं। मेरे ऊपर वाय मी, मुझे क्या समझा, और सो ऑन। तो अपने ऊपर ज्यादती को अगर आप माफ़ कर दें और दरगुजर करें, तो दुनिया में इज्जत और आखरत में बड़ा मर्तबा मिलेगा। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो कोई दरगुजर कर दे और इसलाह से काम ले, इसका अजर अल्लाह के जिम्मे होगा। शेक्सपियर कहता है कि अपने दुश्मन के लिए इतना अलाव ना दहकाओ कि इसमें तुम्हारे भी जल जाने का सामान हो जाए। बात तो बहुत अच्छी है। कई दफ़ा हम इतना जलते हैं दूसरे के लिए कि खुद ही जल जल के राख हो जाते हैं। आशोबे चश्म वाली आंख से कह दो कि बहुत सी आंखें हैं जो मतला साफ हो या गुबार आलूद, इन्हें सूरज दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। यानी ऐसी आंख मांगिए कि दिखे ना दिखे आपको क्लैरिटी से चीज़ें दिखें। इन आंखों से दरगुजर करो जिनकी बसारत अल्लाह ने छीन कर इनका नूर बुझा दिया। वो ना कुछ याद रखती हैं और ना इफाका पाती हैं, यानी आंखों का नूर होते हुए भी बुझ जाता है। किसी शख्स ने सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ताबई से कहा कि तुम बुरे आदमी हो, फरमाया मुझे तुम्हारे अलावा किसी ने नहीं पहचाना। अल्लाह हो, हम हो तो सर फाड़ दें कि तुमने मुझे कहा तो क्यों कहा। और आप देखिए, हम सबसे ज़्यादा दिफा अपना करते हैं, यानी वी आर वेरी गुड लॉयर ऑफ आवर मिस्टेक्स एंड वी आर वेरी गुड जज ऑफ अदर्स मिस्टेक्स। हम दूसरों के लिए जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं। एक शख्स ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, मैं तुम्हें ऐसी गाली दूंगा जो तुम्हारे साथ कब्र तक जाएगी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बल्कि तुम्हारी कब्र में जाएगी, यानी मुझे तो वो नहीं पहुंचनी लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी कब्र तक। एक शख्स ने अमर बिन अलास से कहा, मैं आपसे जंग के लिए यकसू हो जाऊंगा, यानी मैं अब जंग ज़रूर करूंगा आपसे। फरमाया, हाँ अब तुम्हें मसरूफ़ कुन काम मिला। यानी इस सारी बात से या इन छोटे छोटे जुमलों से आप क्या सीखें, बड़ी बात को छोटा बनाना। अपने से लिखे, कहीं मैं छोटी सी बात को बड़ा तो नहीं बनाती, मुझे बात के बतंगड़ बनाने की आदत तो नहीं है। और यकीन करें, अक्सर लड़ाइयाँ या इख्तलाफात या गलत फहमियाँ, उसमें ये छोटे छोटे जुमले होते हैं। मुझे ये कहा, मुझे देख के हंसी, आंख दबाई, फलां को इशारा किया, कनखियों से देखा, बस ये। फिर अगली कहानी हम खुद ही जोड़ लेते हैं। देखिए, सोच सीधी कर लें, आपके अमल सीधे हो जाएंगे। जनरल आइजन आवर कहता है, जिन लोगों को हम पसंद नहीं करते, इनके बारे में सोच सोच कर अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। अच्छा, बात भी ये बड़ी सच है कि हम वाकई आप जिनसे प्यार करते हैं ना, उनके लिए कम ही सोचते हैं। उनके लिए सोच रहे होते हैं कि जो हमें अच्छे भी नहीं लगते। मच्छर खजूर से बोला, रुको मैं उड़ना और तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ। खजूर ने कहा, अल्लाह की कसम, जब तू मेरे ऊपर उतरा था मैंने इस वक्त कुछ महसूस नहीं किया, तो तू जब उड़ जाएगा तो क्यों महसूस करने लगा। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम्हारी बातों से, तुम्हारे होने से, तुम्हारे ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना लाइट लीजिए चीजों को। हातिम ने कहा कि शरीफ और सखी की गलतियां इसकी सखावत के बायस माफ कर देता हूँ, और कमीना और जलील की गलतियां यानी कमजोर और जलील की गालियों से एराज इसलिए करता हूँ कि अपने शर्फ की हिफाजत करूँ, यानी मैं बुरे के साथ बुरा नहीं बनता, हर एक के साथ सखी रही, ये मुराद है, बी जनरस। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो लोग लगवियात से शरीफों की तरह गुजर जाते हैं, सूरत फुरकान में इबादुर्रहमान की सिफात है ये, आयत 72। और वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा, जब जाहिल इन्हें खिताब करते हैं तो ये सलाम करके आगे बढ़ जाते हैं, ये सलाम मुतारका है। एक होता है वेलकमिंग सलाम जो आते हुए करते हैं, एक होता है जाते हुए, मुराद ये कि बहसों में पड़ने की बजाय उनको आगे बढ़ने का मशवरा देते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, गज़बनाक आदमी हमेशा जहर आलूद रहता है। आप देखिए, कुछ लोगों को देख के लगता है कि जहर में बुझी हुई तलवार। हदीस में आता है, गुस्सा न कर, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। इसमें आगे ये है कि गुस्सा आग का एक अंगारा है। शैतान तीन औकात में बंदे पर छा जाता है, गुस्से के वक्त, शहवत के वक्त और गफलत के वक्त। तो ज़रा सा अपना मुहासबा करें, क्या मेरे अंदर ये बात तो नहीं, ज़रा सी ज्यादती हुई और मैं दुखी हुई। हम सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अपने लिए होते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि जितने हम सेल्फ सेंटर्ड है ना और अपने बारे में हम हसास हैं, अगर सिर्फ इतने ही हम इस्लाम के लिए हसास होते ना, तो आज इस्लाम का ये हाल ना होता कि लोग उसको अपनी मर्जी के साथ जो चाहे, जिधर चाहे, जो कहना चाहे वो कह दें। सूरह शुरा की आयत 40, फमन अफा वसलह वजरहू अलल्लाह। आपके मेरे लिए इसमें एक मशवरा है कि जो कोई माफ़ कर दे, इसलाह करे, इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे, मतलब ये है कि फॉरगिव फॉरगेट। आप देखिए कि ज्यादती हुई आप पे, दुख मिला, ये एक अमल था, आप इसके रद्द अमल यानी रिएक्शन में मुआफ़ी और दरगुजर का रवैया अपना लें, ईंट का जवाब पत्थर से ना दें, टिट फॉर टैट ना करें बल्कि टिट फॉर टिट भी ना करें। इंजाम क्या होगा? दुनिया में इज्जत होगी और अजर आखिरत में बड़े रुतबों की सूरत में होगा। यहाँ बैठकर आप अपने मार्क्स लगा सकते हैं जन्नत के, कहाँ जाऊँगी। लोगों को माफ़ करना शुरू कर दें, लोगों की ज्यादतियों से अपने आप को पीछे साइड पे कर लें, आप खुद महसूस करेंगे कि मेरा नाम अमाल चमकता जा रहा है, खूबसूरत हो रहा है। इबादत की हद तक तो हम ठीक ही होते हैं और अल्लाह ताला बेनियाज है, जो दी बेस्ट करके दे दें वो ले लेता है। बंदों के मामले में अक्सर दुखी रहते हैं, यानी मैंने अक्सर लोगों को इस पे नहीं दुखी देखा कि मेरी कल असर की नमाज़ लेट हो गई थी या आज फजर की नमाज़ छूट गई थी। दुखी इस पे देखा वो ये कह गया, तुमने सुना, तुमने सुना। तो क्या करें फिर, मोहसिन बनिए, यानी अम्बिया और सिद्दीकीन का शेवा है। इसी तरह ज्यादती करने वाले को बुरा भला ना कहें, ना सिर्फ ये कि माफ़ करें बल्कि अच्छा सलूक करें और मुस्बत तर्ज अमल अपनाएं। अल्लाह आपको मुझे मोहसिन बना दे। और बस अब होता क्या कि गम और ज्यादती पर गलत रद्द अमल शो करके लोग गुस्से में आग का अंगारा बन जाते हैं। अब यहाँ भी वही सेम चीज़ है ना, ज्यादती और दुख मिला, ये एक अमल था, रद्द अमल बदला, बस गुस्सा और गम अंदोह आ गया माफ़ करने की बजाय। नतीजा क्या निकलेगा, इंजाम क्या है? कनूतियत और तन्हाई यानी मायूस, और अजर गुस्सा करके अजर गंवा दिया यानी बुरा अजर मिलेगा। तो फिर बेहतरी किस में है? माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के नबी से पूछा गया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दें, आपने फरमाया गुस्सा ना करो, और कई मर्तबा पूछने पर आपने यही जवाब दिया। ये सही बुखारी की रिवायत 6116 है। तो बात तो समझ ही चुके हम लोग। तो आपने मैंने छोटी छोटी बात पे सीख पानी होना, अंगारा नहीं बनना, और वो बात तो मुझे खा गई, मेरे तो सर से पांव तक आग लग गई, अल्लाह ना करे आग लगे। रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड और रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने आप को खुद तसल्ली में दिया करें। कभी आपका दिल ज़रा ज़्यादा ही धड़कने लग जाए ना, फ़ौरन अपने आप को चेक करें, मैंने इतना क्यों फील किया, और अपने आप को कहा करें, डोंट फील इट, डोंट फील इट, कुछ भी नहीं होगा। यकीन करें कि जब हम इंसानों की इस किताब को पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हमें खुद से भी काम कराना आ जाता है, और आप उसके अंदर अपने आप को फिर इतना मास्टर कर लें कि अपने साथ दूसरों का भी इलाज करते रहें, उससे इंशाल्लाह फायदा होगा। फिर इसी तरह से अगली टिप लेते हैं, दुनिया तो ऐसे ही लोगों से भरी है। कौन से लोग? जो सताएंगे, जो खपाएंगे, जो आपकी बुराइयां करेंगे। तो क्या करें, किस किस से लड़ेंगे आप, किस किस से मुकाबला करेंगे? रोमन एम्पायर के हुक्मरानों में मार्कुस और विलियस सबसे बड़ा आलिम और दाना था। एक दिन इसने कहा, आज मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलूंगा जो बहुत बोलते हैं, ढूंढने भी नहीं पड़ते, ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं, सुनने वाले थोड़े, बोलने वाले ज्यादा। ऐसे लोग जो अनानियत वाले, यानी इगोइस्टिक, अना है उनमें, खुद पसंद, सेल्फ प्रेजिंग, और मगरूर यानी प्राउड है। लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी लाहक नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया तो ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है। वही बात जो मैंने आपसे कह दी कि आसानी से मिल जाएंगे, कभी कभी तो आईने के पीछे से भी मिल जाएगा ऐसा शख्स। तो हमेशा अपने आप को देखिए। अक्सरियत के रवैये क्या होते हैं? चर्ब जुबान होते हैं, मतलब बहुत बोलते हैं, टॉकेटिव, सरसरा कहते हैं इसको अरबी में। इसी तरह गुरूर और तकबर, अना पसंदी, खुद गर्जी और धोखा दही। तो आपने मैंने इन रवैयों से खुद को बचाना है इंशाल्लाह। बोलिए, नेक्स्ट टिप लीजिए, नेक लोग अनका नहीं हुए। अनका क्या होता है? नापैद, यानी आज भी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। बुरे लोगों का कसरत से होना कोई ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि ताज्जुब तो ये है कि नेक पाए जाते हैं, अगरचे कुछ कम ही है। अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु कहता है कि मसालियत परस्त आदमी इन अमाल से खुश होता है जो वो दूसरे लोगों के लिए अंजाम दे। इसे इस पर शर्म आती है कि दूसरे इसका काम करें। वजह यह है कि दूसरों से हमदर्दी बड़ाई की बात है, लेकिन दूसरों की हमदर्दी कबूल करना नाकामी की बात है। हदीस में आया है कि ऊंचा हाथ नीचे हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो क्या सीखा? कि हमने अच्छा बनना, चाहे वो थोड़े ही क्यों ना हो। और अक्लियत के जो रवैये देखे इसमें, दोहरा लीजिए, खुश मिजाज बहुत थोड़े होते हैं, सिला रहमी करने वाले थोड़े, कनात और सादगी वाले थोड़े, शुक्रगुजारी तो है ही थोड़ों में, और नरमी और इखलास वाले लोग थोड़े होते हैं, और हमदर्दी वाले भी थोड़े ही होते हैं। आपने मैंने क्या बनना है इंशाल्लाह, ये रवैये इख्तियार करने हैं। और फिर ये जो बात हम कहते हैं ना कि नेक लोग कम हैं मगर फिर भी हैं, तो इससे क्या मुराद है? कि आपने इन थोड़ों में शामिल होकर नुमाया होना है। आला ज़र्फ़ लोग क्या करते हैं? दूसरों के काम आते हैं, मगर इसका बदला लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े कामों में तो अम्बिया कराम ही काम कर गए ना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ने का। तो क्या कहते थे? मा सलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे इस काम पर कोई अजर नहीं मांगता। और ये जो रिवायत हमने सुनी ना कि अल्लाह के नबी की, के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से बेहतर है, तो हमेशा ऊपर वाले बनिए। जो भी देंगे आपकी इज्जत उतनी ही बढ़ेगी। ये निसाई की रिवायत 2534 है। क्या सीखा इससे आपने मैंने? पहली बात है कि अल्लाह ताला पर ईमान मजबूत करना है, जो छिन गया इससे मायूस नहीं होना, मुस्बत सोच और बेहतरीन तर्ज अमल अपनाना है, और बुलंद मकसद ज़िंदगी मुतय्यन करना है। छोटी बातों पर रंज नहीं करना, और लोगों की बुराई का जवाब भी भलाई से देना है इंशाल्लाह। बोलिए, अगली टिप लीजिएगा, खामोशी अच्छी ग़िज़ा है। हमारे बड़े कहा करते थे कि अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। रोटी का टुकड़ा, पानी का घूंट और तन ढांपने के लिए कपड़ा मुयस्सर है? पूछिए खुद से। आप कहेंगे 6 किस्म की रोटियां घर में, कहीं डबल रोटी है तो कहीं नान है तो कहीं फ्रोजन पराठे हैं। हाँ, पानी का घूंट है आपके घर में? पूछिए, ऑरेंज पानी, पिंक पानी, रेड पानी, काला पानी, किस रंग का मांगते हैं? सारे ही हैं माशाल्लाह। चलिए जी, तन ढांपने के लिए कपड़ा है, आप कहते हैं क्यों शर्मिंदा करते हैं, अलमारी तो बंद ही नहीं होती, क्या पहनूं क्या ना पहनूं यही सोचती हूँ। तो अगर ये सब है ना, तो फिर खुद से कहिए, फिर गम किस बात का? किसी को तो लोग रोटी कपड़ा और मकान कह के गम की शक्ल में ढाल लेते हैं कि शायद ये चीज़ें ना मिली तो हमारी तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। बहरुल काहिल में एक मल्लाह भटक गया और 21 दिन तक इसे रास्ता नहीं मिला। इसके बाद जब इसे निजात मिली तो लोगों ने इससे पूछा कि इसने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा। बोला, मैंने इस तजुर्बे से सबसे बड़ा सबक ये सीखा है कि अगर आपके पास साफ पानी और काफ़ी खाना है तो आप कभी शिकस्ता दिल ना हो। देखिए ना, 21 दिन तक बंदा अगर सरवाइव कर ले तो फिर 21 साल और 21 के बाद आप और 10, 15, 20 साल लगा लीजिए, फिर भी क्या मुश्किल है। और यही जुमले मैं अक्सर लॉकडाउन के लिए बोलती हूँ और सोचती हूँ, कितने मिनिमम लेवल पे जा रहे हैं, और वो भी लोग जो ख़ास तौर पे मुसाफिर हों, जिनको पता भी नहीं कि हम कब कहाँ रोक दिए जाएंगे। जब बॉर्डर क्लोज हुए या जो भी प्रॉब्लम्स हुए, तो ऐसे बहुत सारे वाक़ हुए होंगे। यकीन कीजिए, ज़िंदगी गुजर जाती है, हमारी मासियों की भी तो गुजर ही जाती है ना। आप कभी अपने घरों में आने वाली मासी को देखे, 2-2.5 जोड़े होते हैं, शलवार किसी की, कमीज़ किसी की, कभी ऊपर कुछ कभी नीचे कुछ। वो कहती हैं, बदी जाके धो के रखते हैं, जो पहले सूख जाए वो अगले दिन पहन आते हैं। तो ज़िंदगी तो ये भी है। और अगर आप इस तरह की नेमतें, यानी जो महदूद हैं, उसके अंदर भी बेहतरीन फ़ायदा खुद से ले दे लें, तो और क्या चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत और भी अंबिया कराम बड़े तन्हाई पसंद और थोड़े पे राजी रह कर दीन का काम करने वाले थे, तो इट्स ट्रू। सारे बीच के मामले ही ख़त्म हो गए, अल्लाह ने आपके सारे गम ही दूर कर दिए, तो फिर अब तो आपको बेहतरीन तरीके से लेना और देना पड़ेगा। तो क्या सीखा? खामोशी, कम बोलिए। आप देखिए, जो खामोश लोग होते हैं ना, नंबर एक, वो अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, उलझते नहीं हैं, बल्कि आप कह लें कि उलझाओ उनकी फितरत का खासा ही नहीं है। और जो खुद नहीं बोलता ना किसी ज्यादती के जवाब में, तो फिर अल्लाह ताला या फिर फरिश्ते उनकी तरफ से जवाब देते हैं। कई दफ़ा आपने वो वाक्य सुना होगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कोई शख्स बुरा भला कह रहा है और आप बोलते ही नहीं आगे से, और अल्लाह के नबी मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं। और जब हद बढ़ गई, यानी वो शख्स हद से गुजर गया, तो अबू बकर सिद्दीक ने भी कुछ कड़वा बोलना चाहा, तो देखा कि अल्लाह के नबी वहाँ से रुख्सत हो रहे हैं। आपको तो फिक्र लग गई कि क्या हुआ, पलट कर गए, जाकर पूछा, अल्लाह के नबी क्या हुआ? कहा कि जब तक वो बोल रहा था और तुम चुप थे, तो मैंने देखा कि अल्लाह ताला ने आसमान से एक फरिश्ते को भेजा और वो तेरी तेरी जगह उसको जवाब दे रहा था, और जब तुम बोले तो फरिश्ता तो चला गया और शैतान आ गया। मकसद कहने का क्या था कि जब शैतान आया तो तुझसे भी कोई ज्यादती ना हो जाए, और जहाँ शैतान हो ना, वहाँ अल्लाह का नबी नहीं होता, तो लिहाजा मैं आ गया। कभी इसको सोचें। एक और मिसाल भी देती हूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे कल्चर में। बोलेंगे नहीं तो लोग कहेंगे झूठी थी ना, इसलिए नहीं बोली। और सच्चे बनने की कोशिशों में अमूमन हम क्या कुछ कर देते हैं, ये हर एक अपने ऊपर लेकर सोच सकता है, इसको समझ सकता है। एक जुमला याद रखिएगा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इतनी बड़ी तोहमत लग गई, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? जाके कह देना, इन्नी नज़र तुले रहमानी सोमा, मैंने तो रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है, यानी आज मैं किसी दूसरे से बात ही नहीं करूँगी इस बारे में कि मेरे पास ये बच्चा आया तो कहाँ से आया, क्या हालात थे और किन वजूहात से ये बच्चा मेरे पास आया। तो ज़िंदगी के एक असूल रखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि फरिश्ते आपका दिफा करें या अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे, तो फिर बोलना छोड़ दें, अल्लाह पर डाल दीजिए, अल्लाह मैं सच्ची हूँ, आपको तो पता ही है। और यकीन करें, अगर जिस शख्स से ज़रा सा मामला बिगड़ा हुआ है उसको ये बात आप कह देंगे ना, तो और भी ज़्यादा वो आपके साथ खुश हो जाएगा। फिर इसी तरह देखिए, खामोश रहने वाले लोग ताकतवर होते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है गलत बात सुन के चुप रहना। जो चुप नहीं रह सकता ना, वो उठा के पास रखी चीज़ तो फेंक ही देता है। और आप ऐसे समझिए जैसे, अच्छा मुझे कहा आपने, ओके मैं समझी, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, ये स्टाइल इख्तियार कीजिए। इसी तरह खामोश रहने वाले नेकियों की हिफाजत करने वाले हैं, क्यों भला? जुमला लिखिए, बहुत दफ़ा बोला पीछे भी, पता नहीं ये सीरीज़ में बोला या कहाँ बोला, कि नेकियों की फसल ज़ुबान की कैंची से कटती है, तो इस ज़ुबान को ज़रा सा संभाल के इस्तेमाल करें। फिर इसी तरह से आप देखिए कि शिकस्ता दिल ना हो, अगर आपके पास दीन की दौलत है, सेहतमंद जिंदगी है, काफ़ी खाना है और साफ पानी है। तो बस जो सब है तो फिर आपके पास तो कोई गुंजाइश ही नहीं है दुखी होने की। इसी तरह जिनाथिन का कॉल क्या है, खुशी और मसरत के साथ कम खाना कामयाब इलाज है। यानी जब आप बहुत खुश हो ना तो कम खाएं। क्यों? आप देखिए कि डॉक्टर्स हैं ये सारे, कौन कौन? दूसरों पे रहम करना, सुकून देना, खुशियाँ बांटना और थोड़ा खाना। यानी फिर आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। फिर इसी तरह से आप देखिए कि खामोशी के फवाद, दिल और रूह को आराम दिया जाता है खामोश रहकर। खामोशी बेहतरीन इबादत है। इख्तदार के बग़ैर ही रोबो दबदबा है खामोशी। देखिए जब तक बंदा बोलता नहीं है ना, दूसरे लोग बहुत डर डर के बैठते हैं। ज़रा से आप बेतकल्लुफ़ हो तब कहते हैं अच्छा 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 आप तो ऐसे ही हैं, चलो आप जो मर्ज़ी बोलें। रोब कम हो जाता है। इसी तरह गुनाहों के इंदराज से हिफाजत, ना बोलें ना फरिश्ते आपके गुनाह लिखें। यानी किरामन कातबीन को भी थोड़ा सा रिलैक्स टाइम मिल जाता है जब आप खामोश रहते हैं। इसी तरह जहालत और अयूब को छुपाने का ज़रिया है खामोशी। क्योंकि जब तक बंदा बोलता नहीं है ना, ना तो उसकी जहालत खुलती है ना उसके ऐब पता चलते हैं। और माजरत और माफ़ी की जिल्लत से निजात। बस अक्सर बोलने के बाद हम क्या कहते हैं, ओ एक्सक्यूज़ मी, अच्छा अगर मैंने किसी का दिल तोड़ा है, अच्छा मैंने गलत कह दिया तो माफ़ करे। यानी ये माजरतें पेश किसको करनी पड़ती हैं, जो बोलता है। और जो बोलेगा ही नहीं उसको दूसरों से माफ़ियाँ भी नहीं मांगनी पड़ेंगी। तो अल्लाह ताला हमें खामोश रहने वाला बना दे। हसन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम करे जो फ़ायदा मंद बात करता है या फिर खामोश रहकर कई आफात से सलामत रहता है। आप देखिए कि हज़रत हसन रदी अल्लाह अन्हो, अल्लाह के नबी के प्यारे साथी, कितनी बड़ी बात कह गए। और ये रिवायत आप देखें तो सिलसिला सहीहा में मौजूद है 2796 पे। तो फिर खामोशी ही बेहतर है। अच्छा किस वक्त खामोशी? हर वक्त नहीं। किसी पर इल्ज़ाम लग रहा है, किसी की इज्जत तोड़ी, इज्जत ख़राब की जा रही है, किसी की गिफ्तें की जा रही हैं, किसी के बारे में ओल फोल बातें की जा रही हैं और आप हंसते रहें कि मैंने तो बोलना ही नहीं, तो याद रखिए कि दुश्मनों के बोलने से इतना नुकसान नहीं होता जितना अपनों के चुप रहने से होता है। बस अब हम जानते हैं कि फलां शख्स अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उसकी बातें कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो हम कहते हैं मैं क्यों बुरी बनूँ, चुप कर जाओ। यदि प्रेशर में आ जाते हैं तो ऐसा नहीं करना।